पालन करना और क्या आवश्यक है इसे पहचानना, ये दोनों चीजें समझ लें, आवश्यक जीवन में क्या है, मेरी अपनी आवश्यकताएं क्या है, ये अलग बात है। मैं किसे आवश्यक समझता हूं ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन मेरे आत्म कल्याण के लिए मेरे जीवन को ऊंचा उठाने में क्या चीजें आवश्यक है, इस मनुष्य जीवन में वास्तव में करने लायक क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे काम हैं जो हमको करना है, उनको हम अनिवार्य मान लेते हैं, लेकिन अपने जीवन का कल्याण स्वयं करना ये भी तो एक बहुत बड़ा आवश्यक है। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी इंद्रिय और मन के वश में ना रहें। जो अपने इंद्रिय और मन के वश में चले, फिर तीसरी चीज उत्साह पूर्वक जाना, अनुत्साहित होकर नहीं, वो भी नहीं हो पाता। अब जाना है, मजबूरी है, इसलिए जा रहे हैं। हम कर भी रहे हैं, लेकिन निर्दोष नहीं होने की वजह से वो हमारे जीवन को ऊंचाई नहीं दे पाए। अपने आत्म कल्याण का कार्य करना यही जीवन में आवश्यक है, और उस आत्म कल्याण के कार्य को भी प्रतिदिन करना, यथा समय करना, और बिना आलस के, बिना अनुत्साहित हुए बल्कि उत्साहित होकर के पूरी उमंग के साथ, ये कहलाएगा निर्दोष। आवश्यक का पालन करना, आवश्यक अपरिहार्य, ये भावना का नाम है, आवश्यक अपरिहार्य। आवश्यकों में कमी नहीं करना, आवश्यकों को निर्दोष रूप से करना। आचार्य महाराज विहार करते हुए चले जा रहे हैं, और उस दिन जरा लंबा विहार, शाम को पहुंचे तो थक तो सभी गए थे, लेकिन होता है एक श्रद्धा होती है, जिसके प्रति हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है तो उसको देख करके हम अपना दुख भूल जाते हैं, और हमें उसका दुख अपने से ज्यादा मालूम पड़ने लगता है। तो सब बैठ के हम लोग आचार्य महाराज के पाटे को घेर करके और पैर दबाने के लिए, तो बोले कह रहे तुम लोग भी तो चल के आए हो, 20-22 किलोमीटर चल लिए आज, और सब थक गए होंगे, फिर भी हम लोगों ने कहा नहीं, आपके पैर दबाने से हमारी थकान दूर हो जाए, तो आप दबवा लीजिएगा पैर। तो कोई पैर दबा रहे हैं सब, उतने में आचार्य महाराज बोलते कि आज थोड़ा लंबा हो गया, आज थक गए हैं, मन ऐसा कर रहा है कि थोड़ा लेट लिया जाए। आप सब बड़े खुश कि बढ़िया रहा, आचार्य जब खुद कह रहे हैं कि थोड़ा लेट किया जाए, तो सबने कहा महाराज जी लेट किया जाए। बस जैसे ही सबने कहा कि थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, आचार्य महाराज ने पीछी उठाई, खड़े हो गए, चारों दिशाओं में आवर्त करने लगे। तब लोगों ने कहा कि अभी तो आप कह रहे थे कि विश्राम कर लिया जाए, और अब तो आप समय करने की तैयारी करने लगे। बोले हाँ, मन तो ये कह रहा है कि विश्राम कर लिया जाए, लेकिन आत्मा तो ये कह रही है कि समय की जाए। मन की नहीं मानूंगा, आत्मा की मानूंगा, इसकी समय करूंगा विश्राम मारने को। ये क्या है, ये आवश्यक अपरिहार्य है मेरे लिए, अब सामायिक का समय हो गया, इसलिए मुझे उस समय उत्साह पूर्वक, ऐसा नहीं कि अब करना पड़े, पूरे उत्साह के साथ यथा समय, और रोज रोज, अब रोज रोज कहां तक करें, ऐसा भी नहीं, जो आत्म कल्याण की बातें हैं वे रोज रोज हम करें। अब समयोचित आवश्यक तो है, लेकिन समयोचित है कि नहीं, इस पर जरा विचार कर लें। निर्दोषता और विचार तो कर लिया अपन ने, समयोचित कई काम ऐसे होते हैं जिनको हम यथा समय नहीं करें तो फिर वे गड़बड़ा जाते हैं। जैसे कि हमको पढ़ना है, अच्छी बात है, आपका पढ़ने का, पढ़ना आपको आवश्यक है, लेकिन परीक्षा होने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है क्या? अरे परीक्षा होने के बाद पढ़ेंगे तो क्या काम का आपका हो? नहीं, हम पढ़ तो रहे हैं, भोजन करने के लिए, भोजन करना आवश्यक है, लेकिन जब माँ भोजन परोसने बैठी है तब तो नहीं, तब तो और दूसरा काम कर रहे हैं, और जब खाने का समय नहीं है तब बैठ गए कि अब खाना खाएंगे। ये सांसारिक कामों में भी हम इतना ध्यान रखते हैं कि कब क्या करना समयोचित, किस समय कौन सी चीज करने के लायक है, इसका भी ध्यान रखना। इसके लिए तो एक बड़ी मजे की घटना आती है। एक अनपढ़ बहू आ गई घर में, पढ़ी लिखी नहीं थी ज्यादा। वो ऐसी कहानी सुना रहा हूं तो जो बहू वगैरह उनको बुरा तो नहीं कहेंगे, वैसे ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है उसमें। अब हो सकता है किसी के जीवन में भी हो सकता है। तो वो सासू जी उसको बहुत ध्यान रखती, उसको बहुत प्यार भी करती थी कि अब थोड़ी कमजोर है बुद्धि से, तो हर काम समझा समझा करके कि बेटे ऐसा करना ऐसे करना, तो वो कर। अब पहली बार उसके जीवन में ये मौका आया कि कोई के यहाँ पर जैसे मरण हो जाता ना तो उसमें बैठने जाना पड़ता। तो बहू से कहा कि अब देखो आगे तुम्हें को तो सब संभालना है, जाओ उनके यहाँ पर बैठ के आना, उनको सांत्वना देना। ठीक चली गई वो, समझ गए सब लोग, चली गई वो और सांत्वना तो दे दी, लेकिन रोई नहीं, उसको उतना ही कहा था कि सांत्वना दे देना। तो सांत्वना दे के आ गई, सबने उलाहना दिया कि देखो तो कैसी बहू है, और दूसरे के दुख में रोई तक नहीं। घर आकर के उसने जब बताया तो सासू ने फिर समझाया कि देखो ऐसे मौके पर तो रोना चाहिए, ठीक है। और ये आप जितनी समझाओगे उतनी अगर करेंगे, स्वयं की बुद्धि नहीं लगाएंगे, समयोचित नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। दूसरी बार क्या हुआ कि दूसरे के यहां पर और बेटा पैदा हुआ। अब इनको तो समझा दिया था, तो जाकर के वहां पर रो करके वापस आ गई। अब जब रोई तो लोगों ने कहा अरे इतने सुख के अवसर पर ही हो रही, अब उसको तो जितनी बुद्धि थी वापस आई। तो उन्होंने कहा देखो ऐसे अवसर पर तो गाना चाहिए, खुश होना चाहिए, अपनी खुशी व्यक्त करना चाहिए। अब तीसरा मौका आया कि पड़ोसी के यहाँ पर आग लग गई, तो ये जाकर के वहां पर बढ़िया से गाने वाने लगे। बताओ तीनों चीजें उसने गलत नहीं की, सांत्वना भी दी, सांत्वना देने की चीज है, रोई रोना भी आवश्यक था, गाना भी आवश्यक था, लेकिन कब क्या करना ये समयोचित, किस समय क्या उचित है, बस इतना सा, वरना सब चीजें इरिलेवेंट हो जाती। और हम अपने जीवन में भी देखें यही हम कर रहे हैं, उस पर तो हमें हंसी आ रही है, लेकिन जब हमें जो करना चाहिए वो करते हैं कि नहीं, नहीं करते। हमारे इंद्रिय और मन के विषयों के पोषण में हमारा धर्म भी छूट जाए तो छूट जाए, कल कर लेंगे। माला छूट गई छूट जाने दो, दर्शन छूट गए छूट जाने दो, शाम हो गई हो जाने दो, रात में खा लेंगे, अभी तो ये काम कर लें। ऐसा क्यों? उधर तो अपन को हंसी आ रही, अपने ऊपर नहीं आती हंसी कि क्या इसी तरह अपने आत्मकल्याण के कार्यों को हम समय पर करते हैं या नहीं करते हैं, किस समय क्या कर लेना चाहिए। नहीं अभी तो दुकान खोल लो, मंदिर बाद में चले जाएंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी जैसे कि और गृहस्थी के काम लगे हुए हैं, दीपावली का काम लगा हुआ है, वो भी किया जा सकता है, धर्म ध्यान भी, लेकिन नहीं, धर्म ध्यान छोड़कर के वो करेंगे कई। नहीं मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं सब जगह यही स्थिति है। क्यों? अभी तो मेरे को बहुत काम है। वे काम भी चलते रहते हैं संसार के, तो उनको तो हम बिल्कुल समयोचित करते हैं। दीपावली आ गई है तो दीपावली पर व्हाइट वॉश करना है, सफाई करनी समयोचित है, दिवाली के बाद फिर नहीं पूछने वाला कोई, तो उसको तो समयोचित है इसलिए। लेकिन ऐसा ही मेरे आत्मा का कल्याण इस मनुष्य जीवन में कर लेना है, फिर समय नहीं मिलेगा, ऐसा आता है मन में कि नहीं? ईमानदारी से अपने आप से, हम नहीं पूछ रहे आपसे, आप अपने आप से पूछना कि क्या ऐसा ही जैसा मैं अपने संसार के कार्यों को ठीक समय पर, क्योंकि बाद में चूक जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक इसी तरह से मन में क्या ऐसी भावना आती है कि सचमुच मुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, मुझे इसमें अपने आत्म कल्याण करने का आवश्यक कार्य कर लेना चाहिए, मैं समय पर कर रहा हूं या कि समय को बर्बाद कर रहा हूं। अनावश्यक कार्यों में हम अपने समय को व्यर्थ जाया करते हैं, लेकिन आवश्यक कार्यों के करने के लिए हमारे पास अवसर नहीं होता, हमारे पास अवकाश नहीं होता। हम कहते हैं कि हमारे पास तो अभी समय ही नहीं है। फिर शायद समय हमसे कहेगा कि अब निकल चुका समय, अब आप कर भी नहीं। अभी जब हम सक्षम हैं करने में, तब अगर हम समय को व्यतीत कर देंगे, जब हम करने के योग्य ही नहीं रहेंगे, तब फिर समय होते हुए भी और फिर हम क्या कर पाएंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। तब कहलाएगा कि हाँ, ये भावना अपने जीवन को के कल्याण के लिए जो आवश्यक है उसे हम ठीक समय पर करने में। क्या आवश्यक है श्रावक और साधु के जीवन में? दोनों की अलग अलग छह छह आवश्यक गिनाए आचार्य भगवंत। क्या भी आवश्यक अपन दिन भर में करते हैं क्या करते हैं, इस पर विचार करें। साधु के लिए तो सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वंदना, स्तुति और कायस्थ, ये छह आवश्यक है। वो अपने आवश्यक कार्यों को यथा समय और प्रतिदिन पूरे उत्साह के साथ करते हैं, करना चाहिए। एक श्रावक के जीवन में भी ऐसे ही छह आवश्यक हैं: देव पूजा, गुरु पास्ति, सात स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग। अगर इसमें से पूरे के पूरे भी नहीं बने तो दो के अंतर्गत डाल दिए, या कि चार के अंतर्गत, साव्यानम चहुव्यानम धम्मो। श्रावक के चार धर्म हैं: गृहस्थ धर्म, दान, पूजा, शील और उपवास। ये चार फिर कहते इतने भी नहीं बनेंगे हमसे, तो कहते दो कर लो, दान और पूजा। श्रावक के लिए अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दो ही आवश्यक कार्य बता दिए, दान और पूजा। पूजा में सत्संगति होगी, दान में अपने रखे हुए परिग्रह के प्रति अनाशक्ति हो। ये दोनों ही चीजें श्रावक के भी जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या अपन इन दोनों चीजों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दूसरे से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो हमें कुछ दे, लेकिन हम सबके लिए सुबह से शाम तक कुछ दे पाते हैं, बांट पाते हैं अपने जीवन में जो हासिल किया है वो, और निर्लोभ होकर के बांट पाते हैं क्या? ये विचार करना है। ऐसा नहीं है कि धन पैसा देना ही देना कहलाएगा। नहीं, आपने प्रेम से दो शब्द भी कहे, आपने दूसरे के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करी, ये कमती दान नहीं है, ये भी दान है। इससे मन विशुद्ध होता है। ये अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दिन भर हमारे जीवन के लिए कितने लोगों का हम पर उपकार है। सुबह से शाम तक इस बात का अगर अपन विचार करें, एक अपने जीवन जीने के लिए कितने लोगों की मदद हमें मिलती है, तब अपना जीवन जी पाते हैं, सांस लेते हैं, वायुकाय जीवों का उपकार है, पानी पीते हैं, जलकाय जीवों का उपकार है, भोजन करते हैं, वनस्पति काय जीवों का उपकार है। हम अगर इस तरह विचार करें तो सब जीवों का हमारे ऊपर कितना उपकार है, जो हम अपना जीवन जी पा रहे हैं, अपने प्राणों को ठीक ठीक ढंग से व्यतीत कर पा रहे हैं, और उस उपकार को भी हम प्रतिउपकार तो करना बहुत कठिन ही है, हम उस उपकार के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाते, इतना सा आवश्यक कार्य नहीं करते। दिन भर में कितनी बार अपना मन कृतज्ञता से भरता है, भरता भी है कि नहीं? प्रति उपकार करने का कितनी बार मन होता है? बहुत रेयर केसेस में, बल्कि यही लगता है कि सब मेरे लिए सब कुछ करें, मैं किसी के लिए कुछ क्यों करूं? एक श्रावक और साधु दोनों के जीवन में ये अनिवार्य है कि वो अब कृतम उपकारम न विस्मरंती साथ। सज्जन पुरुष जो भी होगा वो हमेशा अपने उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा, ये उसके लिए आवश्यक है उसके परिणामों की विशुद्धि के लिए। और दूसरी चीज पूजा। पूजा क्या चीज है? चाहे वो देव पूजा हो, चाहे गुरुपास्ति हो, चाहे शास्त्र स्वाध्याय हो, ये तीनों चीजें पूजा के अंतर्गत आ गई, क्योंकि इसमें प्रॉक्सिमिटी है, इसमें निकटता है भगवान के से, निकटता गुरुजनों से, निकटता और उनकी कही हुई वाणी के प्रति निकटता। ये जो निकटता का भाव है, जिसको अपन अपनी भाषा में कह सकते हैं सत्संगति, ये आवश्यक। एक तो अपने जीवन में प्राणी मात्र के प्रति उपकार की भावना, और जब भी संगति करें तो अच्छी संगति करें, ये दो चीजें भी संभाल लेवें, तो ये दोनों आवश्यक हैं मनुष्य जीवन में। क्योंकि और किसी को इतनी समझ नहीं है कि वे उपकार के बदले उपकार कर सकें और अच्छी संगति करने का उपाय कर। क्षुद्र जीवों को ये संभव ही नहीं है। मनुष्य पर्याय में ये दोनों चीजें बहुत आसानी से, हम चाहें तो अपने जीवन से दूसरे का उपकार कर सकते हैं और हम चाहें तो अच्छी संगति कर सकते हैं। सत्संगति के मायने क्या है, ये थोड़ा सा समझ लें। अपनी तरफ से किससे हम संगति कर रहे हैं, कौन हमारे साथ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम किसके साथ हैं, ये महत्वपूर्ण, क्योंकि दोनों में भाव दशा अलग अलग है। एक भला व्यक्ति खोटे व्यक्ति की संगति करे तो उसके भी विनाश में वो कारण बने, लेकिन एक खोटा व्यक्ति भले व्यक्ति की संगति करे तो वो भी भला बन सकता है। देखो जरा सा फर्क है, जबकि एक खोटा व्यक्ति है एक भला व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन किसकी संगति कर रहा है। भला आदमी बुरे आदमी की संगति कर रहा है तो उसका असर पड़ेगा, और बुरा आदमी भले आदमी की संगति कर रहा है तो उसका असर पड़ेगा। लगता तो ये है कि बुरा आदमी भले की संगति करेगा तो भले आदमी पे भी तो असर पड़ेगा, कहते नहीं उसने संगति नहीं की अपनी तरफ से, बुरे आदमी ने संगति की भले की, इसलिए वो भले से गुणों को प्राप्त करेगा। जब वो भला व्यक्ति संगति करे बुरे की तो बुरे आदमी का असर उस पर हो। ये दोनों की भाव दशा में बहुत फर्क है। कौन हमारे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसका साथ पसंद करते हैं ये महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को उसकी संगति से परखा, कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, कैसे लोगों की उसकी चॉइस है। वस्तु और व्यक्ति दोनों की चॉइस से व्यक्ति का व्यक्तित्व मालूम पड़ता है। इसलिए संगति को बहुत महत्व दिया। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी संगति चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। एक तो परोपकार की भावना और दूसरी अच्छी संगति। खोटी संगति कर ली थी हंस ने, कौवे से दोस्ती हो गई, ठीक है कुछ दिन तो बढ़िया चला। अब दोनों बैठे थे पेड़ के नीचे, एक राहगीर आकर के नीचे रुका, तो हंस परोपकारी था, उसने सोचा कि इसको इतनी धूप लग रही है तो वहीं पर डाल पर अपने दोनों बड़े बड़े पंख फैला करके बैठ गए, तो उसकी छाया हो गई उसके ऊपर। लेकिन कौवे को ये पसंद नहीं आया, तो कौवे को पसंद नहीं आया तो उसने बीट छोड़ दी राहगीर के ऊपर। जैसे बीट गिरी राहगीर की नींद खुली और ऊपर देखा कि पंख फैलाए हंस बैठा है, इसी ने करी होगी, बंदूक उठाई और एक मिनट नहीं लगा। क्या हुआ? ये संगति का, आपने खोटी संगति की है उसका पनिशमेंट आपको देर सवेर जरूर मिले। और अगर हम भली संगति करें तो हमारा जीवन भी ऊंचा हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने वाला बुरा व्यक्ति भी धीरे धीरे लोगों की दृष्टि में कि भैया उनकी संगति तो अच्छी है, अब धीरे धीरे करके ये अच्छे रास्ते पर चल रहा है। इतना असर तो बाहर से पड़ता है। एक इसका भी उदाहरण है, अब बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कोई एक कलाकार था जो बहुत अच्छे चित्र बनाता था। उसने एक बार एक बहुत सुंदर से बच्चे का चित्र बनाया। बच्चा जितना सुंदर था चित्र भी उतना ही सुंदर, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सेल हुआ, बड़ा प्रसिद्धि मिली उसको। शायद ही कोई घर होगा जिस घर में कि उस बच्चे का उस चित्रकार के द्वारा बनाया हुआ चित्र ना लगा, इतना फेमस उस चित्रकार के मन में आया कि कोई ऐसा चित्र बनाओ, ये तो बहुत सुंदर और सरल और भोले व्यक्ति का चित्र है, मैं सबसे क्रूर कठिन और अपराध प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का भी एक चित्र बनाऊं। अब वो खोज में निकले, उसे बहुत क्रूर अपराधी और कठोर हृदय वाला ढूंढते ढूंढते कोई नहीं मिला। उसने सोचा कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जेल में मिले, बहुत क्रूर लोग, बहुत कठोर दिल वाले लोग अपराध करते हैं, तो शायद वहां मिल गया। वहां गया और एक कैदी को देख करके उसे लगा, उसके व्यवहार को देखकर लगा कि ये ठीक है, इसका चित्र बनाया जाए। और वो वहीं बैठ करके काली रोड में और उसका चित्र बना। जब वो चित्र बन गया तब पहले जो उसने चित्र बनाया था छोटे से बालक का, उसे भी उस चित्र के पास में रखा और दोनों चित्रों को एक तक देख रहा था कि एक वो चेहरा है जिसमें भोलापन है, सरलता है, पवित्रता है, दयालुता है, सब अच्छी अच्छी गुणवत्ताएं हैं, और एक और दूसरा चित्र है जो अत्यंत क्रूर है, कठोर है, निर्दय है, अपराध करने की प्रवृत्ति वाला है। अब ठीक है, अब मेरे चित्रकारिता पूरी हो गई, ऐसा वो सोच रहा था। और अचानक उसने देखा कि सीख चौपर अपना सिर पीट पीट करके और वो कैदी रो रहा है। वो तो ऐसा सोच ही नहीं सकता कि ये कैदी इतना कठोर हृदय वाला, इतना अपराध प्रवृत्ति वाला, ये रो सकता है क्या? उसे बहुत आश्चर्य। उसने कहा, भाई कैदी, मैंने तुम्हारा चित्र बनाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इसे देख करके और इतने विहल क्यों हो रहे, इतने दुखी क्यों हो रहे? उसने कहा, कुछ नहीं चित्रकार, तुम जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं बिना जाने तो नहीं जाऊंगा, तुम्हारा रोना मुझे समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, मालूम, जब तक तुम मेरा चित्र बना रहे थे मुझे कोई पीड़ा नहीं, लेकिन जब तुमने अपने पास रखा हुआ एक चित्र और इस चित्र के पास रख करके और देखा, तब मुझे अपना बचपन याद आया। ये जो चित्र है इस बालक का, ये कोई और नहीं, मेरा। मेरे बचपन में मैं इतना ही सुंदर, इतना ही दयालु, इतना ही कोमल, और आज मेरी ये स्थिति भी के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, मेरी खोटी संगति इसके लिए जिम्मेदार। मैं खोटी संगति में पढ़ करके इस चरम तक पहुंच गया एक गुणवत्ता के चरम पर मैं था और एक आज पतन के चरम पर पहुंच गया, इसके बीच में बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि जैसी हमने संगति करी, जैसा हमने साथ ढूंढा था, लिया था, वैसा ही हमारा जीवन बन गया। भाई, मनुष्य जीवन में ये आवश्यक है कि हम पहचाने कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। परोपकार करने योग्य है, अपकार करने योग्य चीज नहीं है। खोटी संगति करने योग्य चीज नहीं है, भली संगति करना हमारे लिए योग है। इसे आप सहज रूप से ऐसा ग्रहण करना चाहें तो ऐसा ले लें, और यह कि देव पूजा गुरु पाश्री सात स्वाध्याय ये भली संगति है, और संयम तप और त्याग ये सब परोपकार की चीजें हैं। अपने और दूसरे के दोनों के उपकार में संयम तप और त्याग या दान ये परोपकार में आता है। तीन चीजें परोपकार करने वाली, और प्रारंभिक तीन में सत्संगति है। हम इन छह आवश्यकों को अपने जीवन में पहचाने, या कि चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, उन चार पुरुषार्थों को जीवन में करें। मुनि जनों के जिम्मे तो मोक्ष पुरुषार्थ है, और शावक के जिम्मे तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ। अपने जीवन में हमेशा धर्म का स्मरण रखना, अपने आजीविका के लिए अर्थ पुरुषार्थ भी करना, कमाना भी, और अपने सोने खाने पीने घर गृहस्थी के काम भी करना, ये काम पुरुषार्थ है। ये तीन पुरुषार्थ हैं, लेकिन तीनों में प्रमुख धर्म पुरुषार्थ है। धर्म पूर्वक ही आजीविका करना, धर्म पूर्वक ही घर गृहस्थी के काम करना। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ दोनों अगर धर्म पुरुषार्थ से समन्वित है तो ही हमारा जीवन ऊंचा उठ सकता है। ये ही मनुष्य जीवन में आवश्यक करने योग्य हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, कह भी चुका हूँ कि तीन पुरुषार्थ हैं और 24 घंटे हैं। बताइए जरा सा, कोई छोटे बच्चे से करवा लीजिएगा गुना, एक एक पुरुषार्थ भी बहुत मुश्किल है। 8 घंटे तो आजीविका के लिए 8 घंटे पर्याप्त, घर गृहस्थी के सोने आने जाने खाने पीने के लिए 8 घंटे पर्याप्त हैं। इसके बाद भी वे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं जो धर्म पुरुषार्थ के हिस्से में आते हैं? उसके लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि हम अपना अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। हमारी लाइफ बहुत अट्रेंडम है, बहुत लापरवाही से जी रहे हैं, तब तो हमारे पास इन पुरुषार्थों के करने के बाद समय नहीं बचता। जबकि एक एक पुरुषार्थ के लिए और अलग अलग हम 8-8 घंटे आसानी से।
मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। महावीर भगवान की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, सबका मन था कि रत्नकरंडक शाकाचार का उच्चारण करवा दें और अर्थ भी बता दें। उच्चारण तो कर ही लेते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा करके अर्थ भी अगर हो जाएगा। कुछ किताबें हैं अपने पास, वो दे दी, और बाकी और किताबों में मिल जाएगा। प्रधमानाय निर्धूत कलिलात्मने तालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते देशयामि समीचीनम् धर्मं कर्म निवर्हणम् धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्यमे सुखे सत्रस्तु ज्ञानव्रतानि सत्रस्ति ज्ञानव्रतानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भौपत्सतिः श्रद्धानं परमार्थाना श्रद्धानं परमार्थाना माप्तागं तपोभृताम् त्रिमूढापूर्णमस्ताङ्गम् सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण दो तरह से लिखा मिलता है आप्तेनोत्सन्न दोषेण और आप्तेनोच्छिन्न दोषेण जो भी पढ़ना चाहे आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिनः भवितव्यं नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत् श्रुत्पिपासा जरातङ्क श्रुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भयस्मयाः न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्यते अनात्मार्थं विना रागी नहीं एक परमेश्वरी परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नाधि मध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतोहितम् धनं शिल्पी करस्पर्शान् मुर मुरजः किमपेक्षते। आठ का उच्चारण कर लिया, इनका संक्षेप में अर्थ भी जान लेना चाहिए। ये एक दिन में एक श्लोक पढ़ने का नियम लेना चाहिए, 150 दिन में 150 श्लोक, और फिर उसके बाद फिर से 150 श्लोक, एक साल में 2 बार आराम से इसको पढ़ना चाहिए। इसके डिटेल्स भी दिए हैं, तो ऐसे करके पढ़ेंगे तो पूरा विषय अपने को उपस्थित हो सकता है, और ये जानना जरूरी है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की है। 35 श्रावकाचारों में सबसे प्राचीन श्रेष्ठ श्रावकाचार माना जाता है श्रावक के लिए, 2000 साल पुराना आचार्य समंतभद्र स्वामी का लिखा। ये आचार्य समंतभद्र स्वामी छोटे मोटे आचार्य नहीं थे, बहुत महान आचार्य। इनको भस्मक व्याधि होने पर वेश छोड़ दिया था, पर सम्यक दर्शन इनके भीतर ज्यों का त्यों बना रहा, और फिर व्याधि दूर होने पर इन्होंने पुनः दीक्षा ग्रहण करके, और जिस तरह से धर्म की प्रभावना की है वैसा उस काल में बहुत दुर्लभ ही था। ये बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य, कोई भी दार्शनिक व्यक्ति स्तुति बहुत मुश्किल से कर सकता है। जो ज्यादा तर्कवान हो जाता है उसके अंदर श्रद्धा उतनी जल्दी नहीं आती, लेकिन एक बार श्रद्धा आ जावे तो तर्कवान व्यक्ति की श्रद्धा को कोई फिर तोड़ नहीं सकता। भोले भाले व्यक्ति की श्रद्धा को तो कोई तर्क दे करके खत्म कर सकता, लेकिन तर्कशील व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो फिर उसकी श्रद्धा बहुत मजबूत होती। ऐसा ही आचार्य समंतभद्र स्वामी के साथ में भी था, इसलिए इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। मैं तो इसको टेक्स्ट बुक मानता हूँ, इसे हम एक टेक्स्ट बुक जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसा ही हर घर में, और ये रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए। एक श्लोक पढ़ा उसकी हिंदी पढ़ ली, विचार करते रहे कि क्या कहना चाह रहे। दूसरे दिन फिर आगे का एक श्लोक पढ़ा, पुराने वाले श्लोक को रिवाइज कर लिया। ऐसे करके पढ़ेंगे और जितने प्रश्न उठें, जो समझ में ना आवे आप लिखते जाओ एक कागज पर, ये समझ में नहीं आया, ये अर्थ समझ में नहीं आया। आप आश्चर्य करेंगे कि पूरा ग्रंथ होते होते पहले जो अर्थ समझ में नहीं आ रहे थे वे बाद में समझ में आने लगेंगे। जो बचेंगे तो उसके लिए किसी बहुश्रुतवान या किसी जानकार के पास बैठ करके आराम से समाधान किया जा सकता है। इसमें कह रहे हैं सबसे पहले कोई भी ग्रंथ शुरू किया जाता तो उसमें मंगल हो सबका, इस भावना से मंगलाचरण किया जाता। मंगम लाति ददाति इति मंगलम, मंगम इति को अर्था सुखा, कहते जो सुख को लाता है वो मंगल है, और ममगालयति इति मंगलम, जो पाप को गला देता है उसे भी मंगल कहते। तो दो परिभाषाएं, जो पाप को नष्ट करता है या कि जो पुण्य का संवर्धन करता है या सुख को लाता है वो मंगल है। मंगल अपने कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, शिष्टाचार के परिपालन के लिए, पापों के नष्ट करने और पुण्य के संचय करने के लिए किया जाता है। इसका रत्नगण श्रावकाचार का जो मंगल है वो अपन देख रहे हैं। पर एक चीज और मुझे ध्यान में आ गई कि इसका नाम का क्या अर्थ हुआ, रत्न करंडक। रत्न करंड बोलते हैं अधिकांश लोग, रत्न करंडक श्रावकाचार। श्रावकाचार शब्द तो ठीक है, श्रावक का आचरण जिसमें लिखा हो वो श्रावकाचार है, लेकिन रत्न करंडक, करंडक का मतलब होता है पिटारा, हाँ, बॉक्स।
जोकनी जो भी कहना चाहो, मंजूसा और अच्छा शब्द है, है ना, ये कहलाता करंडक। तो जिसमें रत्न रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रत्नों की मंजूसा, रत्नों का पिटारा। इसमें भी रत्न रखे हुए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न का ये पिटारा है और श्रावक के आचरण को बताने वाला है, इसलिए इसका नाम रत्न करंडक श्रावकाचार्य। नमाशि वर्धमान है, सबसे पहले मैं वर्धमान महावीर भगवान को, जो श्री संपन्न है, श्री दो प्रकार की होती, बहिरंग श्री मतलब लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी समोशरण की विभूति, और अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्ट है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो है अंतरंग में प्राप्त होने वाली श्री की लक्ष्मी है और बहिरंग में समोशरण इत्यादि। तो ऐसे श्री से संपन्न जो वर्धमान महावीर भगवान है उनको नमस्कार करके ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं। निर्भूत कलिलात्मनि, जिन्होंने अपने कलिल अर्थात पापों को, पाप कर्मों को आत्मा में से निकाल दिया है अर्थात नष्ट कर दिया है। एक अर्थ तो ये है, निर्धूत कलिल आत्मने, जिनके समस्त कर्म का मल हट गया है। तो राग द्वेष इत्यादि का मल हटने पर क्या स्थिति होती, वीतराग। तो पहला लक्षण क्या हो गया, मैं ऐसे वर्धमान महावीर भगवान को प्रणाम कर रहा हूं जो वीतरागी हैं, और इसी से दूसरा अर्थ निकालना पड़ेगा। निर्धूत कलिल आत्मने, जिन्होंने आत्माओं को कर्मों के नष्ट करने का उपदेश दिया, यह हितोपदेश हो गया। दूसरी विशेषता क्या हो गई हमारे भगवान की, हितोपदेशी हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। कितने बढ़िया से ये लिखा गया है, आप देखिएगा। और फिर कह रहे सालों का नाम त्रिलोका, तीन लोक तो हैं लोकाकाश में, लोकाकाश के तीन भाग हैं, और उससे बाहर क्या है अलोकाकाश, जहां एकमात्र आकाश द्रव्य है उससे कहते हैं अलोकाकाश, और जहां छह द्रव्य पाए जाते हैं उससे कहते हैं लोकाकाश। तो कह रहे हैं सा अलोका नाम त्रिलोका नाम, अलोकाकाश के साथ साथ जो लोकाकाश के पूर्व अधो और मध्य भाग हैं, इन तीनों से सहित, यानी लोक और अलोक सबके बारे में, यद विद्या दर्पणाए थे, जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में लोक और अलोक के समस्त पदार्थ एक साथ प्रतिभासित होते हैं। कौन सी विशेषता हो गई, सर्वज्ञपना हो गया। हमारे भगवान की तीन विशेषताएं हैं, वे वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं और सर्वज्ञ हैं। तो यहां पर यही कह रहे कि सबसे पहले मैं अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त महावीर वर्धमान महावीर भगवान को प्रणाम करता हूं। वे कैसे हैं, वे वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं और लोकालोक के समस्त चराचर पदार्थों को जानते हैं। ठीक है, प्रणाम करके आप हमें क्या बताना चाहते हैं। तो कह रहे देश्यामी समीचीनम धर्मम, हम जो है समीचीन धर्म को कहना चाहेंगे, देश्यामी कहता हूं या कि कथन करता हूं, समीचीन धर्म का कथन करता हूं। समीचीन धर्म कौन सा है, कहते कर्म निवरणम, जो कर्मों का नाश करने में कारण बने वो समीचीन धर्म है। धर्म की समीचीनता अकेला धर्म कह देते, कहते नहीं, समीचीन धर्म। इसलिए इस ग्रंथ का दूसरा नाम भी रखा गया समीचीन धर्म। समीचीन धर्म वो है जिससे कि हम अपने कर्म की मलिनता से रहित होकर के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करते, इसलिए कहते कर्म निवारणम। और संसार दुख था सत्वान योधरति उत्तमे सुखे सा समीचीन धर्म। समीचीन धर्म वो है जो कि संसार के दुखों से सत्वान अर्थात जीवानाम जीवों को उठा करके धरती उत्तमे सुखे कहां रख देता है, उत्तम सुख में रख। उत्तम सुख कौन सा है और सामान्य सुख कौन सा है? जिस सुख के साथ में दुख भी लगा हो वो सामान्य सुख है क्या? जिस सुख के साथ में दुख भी पीछे लगा आवे वो तो कहलाएगा सामान्य सुख। और उत्तम सुख कौन सा है? जिसके पास में फिर कभी दुख नहीं आता, जिसको प्राप्त करने पर। तो क्या कह रहे हैं कि संसार के दुखी जीवों को, और जो संसार ही में राजी है वो अकेला नहीं, उसको कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, वो तो संसार ही में राजी है। ये तो अपन तपन के लिए है जरूरी, जिनको संसार में दुख मालूम पड़ रहा उनके लिए है, और जिनको संसार में ही राजी है, जिनको संसार में ही सुख लग रहा उनके लिए नहीं है। कह रहे हैं यहां पर संसार दुखदा सत्वान, संसार के दुखों से जो भयभीत हैं ऐसे जीवों के लिए उत्तम सुख में ले जाने वाला है वही समीचीन धर्म। दो विशेषताएं हो गई समीचीन धर्म की, जो कर्मों को नष्ट करने वाले में सहायक है और उत्तम सुख में ले जाने वाला है, दुख से बचाने वाला। ये विशेषताएं समीचीन धर्म की हैं, ऐसा समीचीन धर्म कहूंगा। ठीक है भाई, एक परिभाषा तो हो गई। कोई पूछे कि रविंद्र शाक्याचार्य के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है, तो क्या कहोगे? कोई रटी रटाई पुरानी, इसके हिसाब से बताना पड़ेगी। न छह डाला की चलेगी, न तत्वार सूत्र वाली चलेगी, न और समय सार जी की परिभाषा चलेगी। रत्नगण शाप्काचार में तो रत्नगण शाप्काचार की क्या कह रहे हैं, इसमें क्या परिभाषा है? संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे, जो संसार के सुखों से जीवों को, यहां पर यह नहीं लिखा कि जैना नाम सत्वान, सब प्राणियों को, सब जीवों को जो संसार के दुख से बचा करके उत्तम मोक्ष सुख में ले जावे, ऐसा समीचीन धर्म है। तो कहते वो धर्म किस रूप है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वृत्तानी अर्थात सम्यक चारित्र। सत शब्द सबके साथ लगाना, सदृष्टि, सदज्ञान, सदवृत्तानी, क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही धर्म है। किसने कहा? कहते धर्मेश्वरा विदु, जो धर्म के स्वामी हैं। धर्म का स्वामी कौन है? तीर्थंकर हैं, वे ही हैं धर्म के प्रवर्तक। तो कहते ऐसे तीर्थंकरों ने कहा है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यही धर्म है। यदि अप्रत्यय ज्ञानी, और इससे जो विपरीत है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, भवन्ति भव पद्धति, संसार को बढ़ाने की पद्धति है वो। आप संसार को घटाना चाहते हैं, संसार के दुख से बचना चाहते हैं, तो यही धर्म है। समीचीन दृष्टि हो, समीचीन ज्ञान हो और समीचीन आचरण हो, ये तीनों एक साथ मिलकर के ही और धर्म कहलाता है। कितने आसानी से अपन को धर्म के बारे में बता रहे हैं एक 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 स्टेप। अब कह रहे हैं कि आपने कह तो दिया कि सदृष्टि, ये सदृष्टि के मायने क्या, ये सम्यक दर्शन के मायने क्या है? तो कहती श्रद्धानम परमार्थानाम आप आगम तपोघ्रता, अपनी भाषा में क्या कहेंगे? सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। यहां से शुरू कर श्रद्धानम परमार्थानाम, लेकिन एक विशेषता इसमें लगा दी, सच्चे देवगुरु शास्त्र या वीतरागी देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो हो, लेकिन सांसारिक नहीं होना चाहिए। परमार्थानाम, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र हैं वे भी अपने परमार्थ में लीन है, और हम भी उनसे परमार्थ की आकांक्षा रखते हुए श्रद्धा करें तो श्रद्धा सही कहलाएगी। उन्हीं तमाम काम सट जावे, सो चलो पूजा करें आऊ, वो महाराज के चू बता दे मंत्रंत्र, सो चलो रे अपन महाराज के दर्शन करें आए। वो जिनवाणी पढ़े से चार जनों के बीच में होशियार कहाँ है, सो पढ़ लो जिनवाणी पढ़ लो। ये भैया ऐसे तो पढ़े बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते, इससे नहीं होएगा। मेरा कर्मों का नाश होगा, मैं संसार से मुक्त होऊंगा, ऐसी परमार्थ भू श्रद्धा अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति है तो वो कहलाएगा सम्यक दर्शन। और कितनी चीजें देखो, कोई भी अच्छी चीज हो अपने पास में और साथ में खराब वाली चीज भी हो तो उतना असर नहीं होगा। तू कहती श्रद्धा को खराब बनाने वाली चीजों से दूर भी रहना पड़ेगा। त्रिमूढ़ा पोड़म, तीन मूर्ताओं से रहित होना चाहिए, नहीं तो आपके सम्यक दर्शन में मलिनता आ जाएगी। मूर्ता का समझते अविवेक, अविवेक कहलाता है। मूर्ता माने टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधे नगरी चौपट राजा, सबको एक तराजू में, कोई विवेक ही नहीं है। रागी है तो देशी है और वीतरागी है, सबको एक ही में तोल दी। हम तो सबको समान रूप से मानते हो गई है तो फिर ठीक है। अभी 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 आपको देवगुरु शास्त्र के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको लेकर के आपके मन में विवेक नहीं हुआ है जागृत। अविवेक पूर्ण अगर आपकी क्रिया है तो आपकी श्रद्धा को मलिन करेगी। इसलिए कह रहे कि तीन मूर्ताओं से रहित और अष्टांगम आठ अंगों से सहित होना। जिसके सम्यक दर्शन है उसके आठ अंग अवश्य आएंगे। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूर दृष्टि उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना, ये आठ आए बिना नहीं रहेंगे। सम्यक दर्शन जिसके हो गया हो। और कहते आयस्मयम और आठ मदों से रहित, अहंकार से रहित अगर होंगे तो आपकी श्रद्धा टिकेगी। देखो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। वह श्रद्धा तीन मूर्ताओं से रहित, आठ मदों से रहित और आठ अंगों से युक्त होना चाहिए। ये बात सम्यक दर्शन के बारे में संक्षेप में कह दी। अब मन में विचार आ गया कि भैया आपने कहा कि आप्त, आप्त के मायने क्या होते? आप्त के मायने होता है देव, देवादि देव। तू कहते इनका स्वरूप बताओ, जब तो हम पहचानेंगे कि जी सच्चे देव हैं, जी वीतरागी देव हैं। और आगम, आगम का मतलब होता है शास्त्र हैं, और तपोव्रताम मतलब साधु जन, गुरु जिसको कहते तपोव्रत, अर्थात तपस्या से जो भरे हुए हैं या तपस्या में जो लगे हुए हैं। अब इन तीनों का स्वरूप बताएंगे, फिर मूर्ताएं बताएंगे, फिर आठ अंग बताएंगे। नहीं, पहले आठ अंग बताएंगे, फिर बाद में आठ अंग के बाद मूर्ता बताएंगे, बीच में आठ मदों के बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह अब देखो देव का स्वरूप क्या है। ये पूरा आठ पद तक अपन ने जितना पढ़ा उतने में ये पूरा देव का स्वरूप ही चले गए। कहते हमारे भगवान कौन से हैं? हमारे तुम्हारे से मतलब नहीं है, वास्तव में वीतरागी भगवान सु भगवान है। वो कौन है? आप तेल उच्छिन्न दोषी, जिनके 18 दोष, 18 होते हैं दोष मैक्सिमम संसार में, उन सब दोषों से रहित हैं। आप तेल उच्छिन्न दोषे सर्वज्ञ आगमेशिना, सर्वज्ञ हैं, आगम के जानकार हैं। भवितव्यम नियोगेन, अगर ये सब चीजें नहीं हैं तो ना अन्यथा याप्तता भवे, तब फिर उनके अंदर देवपना नहीं होगा। कसौटी दे रहे कि आप देव को पहचानना चाह रहे कि देव कौन है, भगवान कौन है, किसके प्रति हम श्रद्धा रखें, तो एक लाइन में बता दिया कि जो समस्त दोषों से रहते हैं, सर्वज्ञ हैं और आगमेशिना, आगम के जानकार, आगम का उपदेश देने वाले, वही विशेषता यानी तीन। अगर देखा जाए देव की क्या विशेषता है, उच्छिन्न दोषेन दोष से रहित अर्थात वीतरागी है, और सर्वज्ञ तो है, और आगमेशिना अर्थात हितोपदेशी, आगम का प्ररूपण करने वाले, तो तीन विशेषताएं हैं, वो हमारे देव हैं। दिखती क्या चीज है भैया? सर्वज्ञता दिखती है क्या? भगवान बोले नहीं तो क्या पता लगेगा कि आप सब जानते कि नहीं जानते? अच्छी बात, हितोपदेशीपना भी कब दिखेगा? जब भगवान बोलेंगे तब। और भगवान चुपचाप बैठे तो क्या दिखेगा? वीतरागता। ये कसौटी है, भगवान किसे मानेंगे? वीतराग स्वरूप जिनका है, बाह्य में भी और अंतरंग में भी। इस
तरह देव के लिए हम विश्वास करें, ऐसे देव पर ही हम श्रद्धान करें, इसके बिना आप्तता नहीं बनती, तो फिर वे दोष कौन से हैं? ये भी तो गिनाओ। छुत पिपाशा जरातंक जन्मांतक भयस्मया राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्तते। इसमें दोष गिना दिए सब। छुत, छुदा मने भूख, पिपासा प्यास नहीं लगती, बुढ़ापा नहीं आता, जिनके रोग नहीं है, जिनके जन्म मरण नहीं है, भय नहीं है, अहंकार नहीं है, गर्व जिसको कहते, राग द्वेष मोह नहीं है जिनके, और चा शब्द से और ले लिए, जिनके चिंता नहीं है, आरती नहीं है, निद्रा नहीं है, विस्मय नहीं है, मद नहीं है, स्वेद नहीं है और खेद नहीं है। ये 18 जो है दोष हैं, जो संसारी जीवों को सबको लगे, अपन तपन को जी 18 सबको लगे हुए हैं। भगवान कौन है जो इन 18 दोषों से रहित हो गए हैं? वे आप्त हैं, अर्थात सच्चे देव हैं। ये इस तरह और भी देव के बारे में स्वरूप कह रहे हैं कि देव और कैसे हैं। परमेष्ठी, जो परमे इंद्रादि नाम वंदे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी, ऐसे भी हमारे भगवान परमेष्ठी हैं, परम ज्योति स्वरूप हैं, केवल ज्योति जिनके उत्पन्न हो गई है। विरागो विगत राग, जिनके राग द्वेष सब समाप्त हो गए हैं। विमला, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रूपी मलिनताओं से रहते हैं, इसलिए प्रमिल विमल हैं। कृति, अर्थात जो करने योग्य था उन्होंने सब कर लिया, और करने योग्य रहा नहीं, ऐसे कृतकृत्य हैं। सर्वज्ञ हैं, तीनों लोकों में, जो तीनों लोक और अलोक इन सब में जो जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं और उनकी अनंत पर्याय हैं, उन सबको जानने वाले हैं। और अनादि मध्यांतः, आदि अंत और मध्य से रहित हैं, ये विशेषता है। सार्वः, सब जीवों के कल्याण का भाव जिनके भीतर है, सर्वहितकारी हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, सार्वः सबका हित करने वाले। शास्ता उपलालिते, शास्ता का मतलब होता है हितोपदेशक। ये सब शास्त्र, ये सब जो है भगवान के ही नाम हैं। परमेष्ठी कहो, परम ज्योति कहो, विरागी कहो, हैं विमलक विमल कहो, कृति कहो, सर्वज्ञ कहो, आदि अंत मध्य से रहित कहो, हैं शास्ता कहो, ये सब उन्हीं वीतरागी भगवान के ही और नाम हैं, उनकी विशेषताएं भी हैं। और कैसे हैं भगवान? अनात्मार्थम बिना, अपने किसी स्वार्थ के बिना। शास्ता शास्ति सतोहितम, शास्ता अर्थात आप्त भगवान बिना राग के और बिना किसी स्वार्थ के। सतः हितम शास्ति, सब जीवों के कल्याण को चाहते हैं, सब जीवों के कल्याण का उपदेश देते हैं। कैसे? केति भनन शिल्पी करस्परशान मुरझा किम अपेक्षते, जैसे कि कोई शिल्पी कलाकार अपना हाथ मृदंग पर जोर से पटकता है तो मृदंग में से मधुर स्वर निकलने लगते हैं। बताइए, क्या वो मृदंग कलाकार से कुछ चाहती है? कहती नहीं। जैसे कि बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से और मृदंग शब्द करने लगता है पर उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती, इसी तरह भगवान का हितोपदेश सब जीवों के कल्याण की भावना से, उनके अपने किसी स्वार्थ वश नहीं, न किसी राग वश उपदेश होता है, निस्वार्थ भाव से अत्यंत वीतरागता के साथ जो प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश देते हैं, ऐसे जो है हमारे भगवान हैं। अब जो है शास्त्र का स्वरूप आ जाएगा, फिर 8-8 पढ़ लिए बहुत हो गए वैसे तो एकदम। उच्चारण आना चाहिए भाई। महाराज, यदि किसी में गुण नहीं है और उसे प्रोत्साहन मिले तो क्या उसका सदुपयोग करेगा? वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों बातें। जो गुणवान नहीं है लेकिन दुर्गुणी भी नहीं है, उसके तो चांसेस हैं। प्रोत्साहन मिलने पर गुणवान बन सकता, लेकिन गुणवान भी नहीं है और दुर्गुण उसके अंदर बहुत हैं, और उसको प्रोत्साहित करोगे तो वो सोचेगा कि मेरे दुर्गुणों की वाहवाही हो रही है, इसलिए बढ़ेंगे उसके दुर्गुण। तो बड़ी सावधानी की बात है। व्यसनी आदमी होवे और पैसा ढीला न होवे और उसको पैसा से मदद करो, का करे भैया वो बताओ? और गरीब आदमी